था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आज आप सुन रहे हैं सूर्य बाला की लिखी कहानी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। बात फैल गई चारों तरफ, जंगल की बात, जंगल की आग की तरह। अरुण वर्मा ने आज फिर एक ट्रक पकड़ा है। पकड़ा है तो खैर, ऐसी कोई खास बात नहीं, सभी फॉरेस्ट वाले पकड़ते हैं ऐसे कि जहां माल लाद कर चुपचाप रफू चक्कर हो जाने की सरसराहट सुनी, टॉर्च की रोशनी फेंक कर एक तीखी सीटी के साथ दहाड़ मार दी, स्टॉप। कहां जात है बे, खबरदार जो भागने की कोशिश की। चलो रोको ट्रक, रोको। ट्रक रुक जाता है, बैठा हुआ ड्राइवर और साथी उतर आते हैं हाथ जोड़कर। फिर कुछ अदद, हुजूर माई बाप, किस्म के सिखाए पढ़े पढ़ाए मुहावरे, कुछ गरज तरज, लानत मलामतें, घुड़कियां और फुसफुसाहटें, और सबसे आखिर में एक हाथ से दूसरे हाथों में सरकती हुई नोटों की कड्डियां, और इसके बाद ट्रक ऊपर से बीड़ी और पीछे से जले तेल का धुआं छोड़ता, जंगलों को रौंदता आराम से गुजर जाता है। सो इन बातों से कोई उत्तेजना नहीं फैलती। उत्तेजना की लपटें तो फैलती हैं जब अरुण वर्मा कोई ट्रक पकड़ते हैं, क्योंकि पकड़ते हैं तो किसी हालत में छोड़ते नहीं। दूसरे उनके ट्रक पकड़ने पर ना मटन पुलाव बन पाता है ना चिकन बिरयानी, उल्टे हफ्तों पखवारों, सनसनी, हलचल, इंक्वायरी, बैठकें, कुल मिलाकर मौसम में ठंडक पड़ते पड़ते महीनों लग जाते हैं। इस बार तो सीधे सीधे दावानल ही भड़क दिया इस अकल के दुश्मन ने। जो ट्रक पकड़ा वो किसी ऐसे वैसे ठेकेदार जत्थेदार का नहीं, सीधे सीधे एमएलए के भतीजे का, और ये नाते रिश्ते तो दिखाने के लिए हैं, असल में तो सारा का सारा कारोबार ही उनका है। अब ऐसे नादान तो नहीं थे कि पहचान ना पाए हों। अरे लाल सूरज के छापे और त्रिशूल की निशानी वाले ट्रक दूर से ही अपनी पहचान बताते हैं। निशानी लगाई किस लिए गई है? बेकार का अड़ंगा हटाने के लिए ही तो। जंगल का जर्रा जर्रा जानता है, कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं। जब सारे क्षेत्र में उनका राज है तो जंगल क्या उससे अलग है? उनका जंगल वो चाहे काटे चाहे रखे। अरुण वर्मा के बाप का क्या जाता है, हैं? सब कुछ जानते हुए रोका। अपने पूरे होशो हवास में थे अरुण वर्मा, इसमें भी लोगों को शक है, पर पीते पिलाते भी तो नहीं, कुछ ज्यादा बोलते बतियाते भी नहीं। फिर भी अब ऐसे कांडों के बाद उनके अगल बगल से गुजर कर किसी को अपना सिर कलम करवाना है क्या? खैरियत चुपचाप कतरा कर निकल जाने में ही है। जो भी हो जाए, यहां से तो चैन की सांस पड़े अगल बगल के खाते पीते क्वार्टरों में। पर खाना पीना बदसूरत चलते रहने पर भी एक उधेड़ बुन तो जब तब हलकोरती ही है कि आखिर क्या मिलता है इस शख्स को हर महीने दो महीने पर अपना सिर इस महकमे की चक्की में डालकर कुटवाने में। देखने सुनने में ऐसा कोई खबती सनकी किस्म का या अकड़बाज अड़ियल तो नहीं है, सीधा सादा पढ़ा लिखा बाल बच्चेदार आदमी, पूरे अदब कायदे वाला। फिर इसकी आदतें आखिर बिगड़ी कैसे? खोट कहाँ है कि अपने कैरियर में भदरंगी थिगलियां लगवाता, यहां से वहां तबादलों का फरमान लिए भटकता। इस हलके में भी तो शायद अभी सारा सामान खुला भी ना हो। अगल बगल के क्वार्टरों की खिड़कियां आहटें लेती खुलती बंद होनी शुरू हो गई। सरे शाम घर लौटे पतियों से हड़बड़ाई बीवियां पहले यही पूछती हैं, क्या हुआ? माने की नहीं अरुण वर्मा? मरेंगे और क्या। गृह स्वामी लुंगी का फेटा कसते कसते चाय का प्याला थाम लेता है। मगर आदमी दिलेर तुम्हारा सिर, जवाब कुछ इस तिलमिलाहट के साथ मिलता है कि पूछने वाली सिट पिटाकर भजिए तलने पहुंच जाती है। गरम भजिए आने तक गृह स्वामी माकूल जवाब सोच चुका होता है। अभी नया खून है ना, उबाल आते देर नहीं लगती। जब खून जलना शुरू होगा तब आटे दाल का भाव पता चलेगा बच्चों को। कुछ इसी किस्म का वार्तालाप बाकी क्वार्टरों के पतियों और उनकी बीवियों के बीच चलता होता है। महादेव कह रहा था, बड़ी गहमा गहमी है आजकल दफ्तर में। अच्छा, ये अरुण वर्मा है? कैसा है देखने में? मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी देखा हो। बताऊं, दो सींग है, सींग सिर पर उसके और पीछे लंबी सिद्धू। पति हड़क कर कहता है, तुम लोगों की आदत है बात का बतंगड़ बनाने की, और इस आदमी को भी क्या कहा जाए। पूछो, जो चीज हर तरफ से एक्सपेक्टेड है, खुलेआम चालू है, ऊपर से नीचे तक हर कोई जानता समझता है, उसे लेकर इस तरह की बेवकूफी की हरकत कर कौन सा झंडा फहरा लेना चाहता है? सिर्फ हद दर्जे की नासमझी और कूड़ मगजी। लेकिन सुनने वाली ने चपरासियों माथतों की कानाफूसी के दौरान जो कुछ सुना था उसे सहेजती वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है उसे पहले से मालूम होता है कि ट्रक फला फला का है तो भी रोक लेता है? गृह स्वामी इस सवाल से कतरा जाने के लिए ना सुनता सा जल्दी से आलू चाक का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में भर लेता। दफ्तर में भी फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर सरकती हुई फुसफुसाती हुई यही सवाल पूछती रहती, क्यों भाई, मालूम नहीं था इन अरुण वर्मा को, या जानबूझकर शेर की मांद में? अरे वो छोड़ो भी, जाने में या अनजाने में, लेकिन अब होगा क्या? कहां डिस्पैच किए जाएंगे यहां से? यार, डिस्पैच की बात तो तब होती है ना जब लाख दो लाख के ठेकेदारों ताबेदारों के काम में खलल आता है। ये रास्ता तो सीधे सीधे जन्नुम को जाता दिखता है। अच्छा, ये इसने बिना किसी सोर्स पुल के यूं ही कर डाला? कहीं कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं? ऐसा तो कोई खानदान या खानदानी जर जमीन मिल्कियत वाला भी तो नहीं है? तब करता क्यों है ऐसा? सुना, बच्चों की दो बरस की पढ़ाई का नुकसान पहले ही हो चुका ऐसे ही झमेलों से। बेबात इतना बड़ा बखेड़ा मोल लेना और कुछ समझ में भी नहीं आता आखिर करता क्यों है। कुछ नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि भैये। सुना, पिछले हलकों के सहकर्मियों में तो मशहूर हो गया था कि जो घर फूके अपना जाए अरुण वर्मा के साथ, यानी ब्लैक लिस्टेड। तभी दो हथड़ मार कर एक मंचला ठहाका लगाता है, वाह, जरा सोचो यार, ईमानदारी और असूलों पर भी बाकायदे ब्लैक लिस्टेड होने लगे ना। अम्मा, कहाँ की फिलॉसफी छाट रहे हो? अभी तुमसे कहें कि जरा आज की जिंदगी से सही और गलत, ईमानदारी और बेईमानी को छोड़ छोड़ अलग अलग खतियाओ, तो क्या कर लोगे? बोलो, कुब्बत है छाटने की? अरे मालूम तो होगा, बेईमानी, झूठ और फरेब से निकलकर जिंदगी का तजुर्बा करोगे तो क्या होगा? इस पर खटर खट चलते टाइपराइटर अटक कर लम्हे भर को रुक, लेकिन फिर बदसूरत सिर झुकाए यंत्रवत चालू हो गए। घर घर आते कूलर की साउंड प्रूफ दीवारों के अंदर भी एक मातहत आवाज पेशी लगाती, सर वो अरुण वर्मा वाले केस का किया क्या जाए? अरे भाई तुम करना क्या चाहते हो? मेरा क्या चाहना, आवाज हकलाती है। आप चाहे क्यों, वर्मा तुम्हारे अंडर में है, इमीडिएट बॉस तो तुम हो, रिपोर्ट तो तुम्हें ही बनानी है, कमेंट के साथ फॉरवर्ड भी करनी है भाई। आवाज कूटनीतिक हंसी के छर्रे सी छोड़ती है। तुम इसे ईमानदार मानते हो तो लिख दो, अफसर फायदे को फर्जी में बदल देता है। लेकिन सर मेरे मानने ना मानने से ज्यादा तो महकमा प्रूफ पर जाएगा ना, और प्रूफ में पहले ही 3-3 जगहों से ट्रांसफर, ये सारी बातें रिपोर्ट के साथ ऊपर तक जाएंगी। लुक, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, दूध पीते बच्चे नहीं कि सारी बातें तुम्हें नए सिरे से समझाई जाएं। नहीं, अब समझ में आना कहां बाकी रहा। अफसर को इस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने साफ इशारा कर दिया। तो गले में फिर भी कहते हुए कुछ रूंधता है, फिर सस्पेंड सर। ओके, छोटा अफसर समझता है इस लहजे को, बड़ा अफसर खुश है। ये साफ साफ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हटाओ सस्पेंड करो साले को, आखिर देर सवेर उसे बर्खास्त तो होना ही है। ऐसे ऐसे मुझी इस महकमे में और कितने दिन चलेंगे, इतना तो उसे ट्रक पकड़ने के साथ ही मालूम होना चाहिए था कि किस ट्रक को पकड़ने का क्या हश्र होता है। हमें भी तो ऊपर तक जवाब देना पड़ता है। पूरे दफ्तर में सनसनी फैली और बैठ सी गई, अरुण वर्मा सस्पेंड हो गए। लेकिन अपना साहब बड़ा नेक दिल है, राज किशोर बताता था कि उन्हें सस्पेंशन लेटर देते समय उनकी आवाज भर्राई थी और उनके हाथ भी कांपे थे। वरना जंगल का महकमा जंगल से ज्यादा जंगली होता है। लेकिन ये अरुण वर्मा अजीब ही भेजे का आदमी है भाई, सस्पेंडेड का लिफाफा लेकर ऐसे निकला जैसे साग भाजी लाने के लिए थैला लेकर निकला हो। निर्विकार निसंकोच चेहरे पर ना आक्रोश ना उद्वेग ना तिलमिलाहट और ना शर्मिंदगी, यानी बेहया किस्म का है का ना, एकदम सपाट थमा धमा सा, किसी को देखकर मुस्कुराहट वैसी ही बरकरार हो जाना, ना किसी को मुंह चुराने का अवसर देना और ना कतराकर निकल जाने का ही, खुद बढ़कर हाल चाल पूछ लेना और अंत में सस्पेंशन ऑर्डर लिए चुपचाप घर आ जाना। पड़ोस के क्वार्टरों की खिड़कियां फिर अकुलाहट से खुलनी बंद होनी शुरू हो गई, कुछ आहट या सुराग तो लगे, पता नहीं बेचारे के घर चूल्हा जला या नहीं। इसी बहाने ऑफिस से लौटे कुछ लोग बीवियों से पूछ रहे हैं, क्या कहती हो, चलना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, तुम तो उसी दिन से कह रही हो, पर यहाँ तो आगा पीछा सब सोचना पड़ता है ना, कब किस क्वार्टर की खिड़की क्या सुराग ले रही है और लेकर आला टेबलों पर जड़ दिया तो। बीवी, बच्चों वाले ठहरे डर कर रहने और दुबकने में ही खैरियत है। और बीवियां सोचती हैं कि अगर आज इन मर्दों के हम बीवी बच्चे ना होते तो अपनी सारी तोहमतें ये आखिर किसके पल्लू में बांधते। अच्छा लेकिन चलो, भाई, अब तो जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ खास खतरा नहीं है, चलो मिलजुल आया जाए। बच्चे दरवाजा खोलकर किलके, पापा भाटिया अंकल आंटी आए हैं। तो अंदर ले आओ बेटा। वे लोग अजीब सकते किसी स्थिति में घुसते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सामान्य और शांत सा। फिर भी बात शुरू करना समझना तो अपना फर्ज है। भाई वर्मा, मुझे तो बड़ा रंज हुआ सुनकर, बाई गॉड बहुत। शाम जब से आए हैं तब से उदास बैठे हैं, बीवी ने हुंकारी मारी। फिर भी एक बात कहूं, ये कहां का बवाल अपने सिर लेकर बैठे, ठीक नहीं किया। अरुण वर्मा चुपचाप सुनते रहे। अच्छा, बड़े भाई की हैसियत से एक बात पूछता हूं, कोशिश नहीं की कहीं मामला रफा दफा करने की? अरुण वर्मा ने हैरानी से उनको देखा। मैं ही मुद्दा उठाऊं और मैं ही रफा दफा करने को कहूं? लो भाई, सभी करते हैं, कह देते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि ट्रक मृत्युंजय सिंह के भतीजे का है। अरे बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। लेकिन भाटिया साहब, मुझे तो मालूम था, ट्रक वाला बार बार इसी बिना पर तो धमकाना चाह रहा था, और जब अपने सच को झूठ में बदल दूं? अमा यार, जिंदगी में ये सब रामायण महाभारत घसीटते क्यों? अरुण वर्मा रोकते ना रोकते कह ही गया, लेकिन रामायण महाभारत जिंदगी की ही जमीन से उपजे हैं भाटिया भाई। छोड़ो यार, तू छोटा है अभी, इतना तो मानोगे कि उम्र में मैं एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ा हूं, उसी हिसाब से कह रहा हूं। ये मगजमारी छोड़ हंसी खुशी रहना सीखो, कहते हैं ना जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरुण वर्मा चुप हो गए। वो कहना चाहते थे कि जिंदा दिली के अर्थ हमने बदल दिए हैं भाटिया साहब, लेकिन कह ना सके, शायद वो जानते थे भाटिया की समझ में वो सब आ नहीं पाएगा। लेकिन अपने को रोकते ना रोकते जैसे पूछे बिना रह नहीं पाए। एक बात बताइए भाटिया साहब, क्या आप सचमुच समझते हैं कि ये मेरी भूल है, गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? इतनी देर से समझदारी और चतुराई बखानते भाटिया की आंखें सक पका कर सीधे जमीन की ओर झुक गईं, लेकिन तत्काल साथ ले गए भाटिया। देखा, सोचने समझने का कोई अंत नहीं है, बिना वजह इस सब में सिर खपाने से क्या फायदा? अरे ना कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मैं नफे नुकसान की नहीं भाटिया भाई, सही गलत की पूछ रहा था, अरुण वर्मा ने नम्रता से टोका। ठीक है भाई, सोचो भी, सोचो, जमाओ सही गलत के हिसाब का रोकड़ा, लेकिन पहले अपने बीवी बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा थमाना ना भूलना, समझे? तुरंत भाटिया को ख्याल आया कि कह क्या गए, तो वसुधा वर्मा की ओर झुकी नजरों से देखकर बोले, माफ करना भाभी जी, थोड़ा जज्बात में बह गया। और वापस वर्मा की ओर मुखातिब होकर बोले, इतना समझ लो, आदमी सिर्फ शगल के लिए ये सब करता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। कहते कहते भाटिया हाफने लगे। अरुण वर्मा जैसे भाटिया से नहीं, खुद अपने आप से बोले, हाँ यही तो, चाहते हम कुछ और हैं, करते कुछ और, जैसे गलत पाठ को गलत समझते हुए भी रटते चले जाने की आदत सी पड़ गई है। भाटिया चले गए तो कौशिक आए, ठीक वैसे ही अंदरूनी स्कूप की तलाश में शुरुआत यूं की। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे वर्मा, कहीं किसी ने तुम्हें उकसाया तो नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई विरोधी पार्टी वालों ने? दरअसल एक बार पहले भी ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अरुण वर्मा ने उनका आशय समझकर टोका, कम से कम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
ऐसा कुछ नहीं?
कौशिक की आंखें हैरानी से फैलती चली गई। तो तुम्हारा मतलब है इस दुस्साहस और तबाही का तुमने खुद बुलावा भेजा है? कहीं कोई और ताकत, तुम्हारी बैंकिंग? हाँ कौशिक साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, एक ताकत है जो हमेशा मेरी बैंकिंग करती रहती है। लेकिन पता नहीं, शायद ये ताकत से ज्यादा एक आदत, एक लत हो। अरुण वर्मा बच्चों सी हंसी हंसते हैं। कौशिक का चेहरा उतरता चला जाता है, एक विचित्र एंटी क्लाइमेक्स से गुजरने की तरह। ये कैसा रहस्योद्घाटन कि मुंह चुरा कर निकल जाने को जी चाहने लगे। लेकिन फिर भी मंच के बीचों बीच फंसे थे, एकदम से भागा भी तो नहीं जा सकता था। फिर भी मान लो तब तैश में थे, लेकिन अब तो आगा पीछा तो सोचो। लगातार सोचता रहता हूँ भाई, लेकिन ये लत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मुझसे चिपक कर बैठ गई है, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है भाई, अपना तो फर्ज था, बता दिया। निगला हसिया, उगलते वक्त मालूम पड़ेगा। और कतराते हुए कौशिक भी उठ खड़े हुए। कौशिक के बाद जोशी, और जोशी के बाद प्रभाकर, प्रभाकर के बाद अस्थाना। वसुधा थक गई थी, अंतिम मेहमान के जाते ही बोली, खाना लगा दूं? हाँ, भूख लगाई है, बच्चे भी सो गए क्या? घिरे सन्नाटे के बीच भी वसुधा ने मुस्कुराकर आंख मारी, इशारा था बच्चे सोए नहीं, आंखें मूंदे सोने का बहाना कर रहे हैं, खाट पर पड़े पिता का इंतजार कर रहे हैं, पापा को बुद्धू बनाने के लिए। अरुण वर्मा बच्चों की खाट के पास गए, उन्हें ध्यान से देखने का ढोंग करते हुए वसुधा को आवाज दी, अरे बच्चे तो सो गए, चलो हम दोनों खा ही लेते हैं। और बच्चे चादर फेंक कर किलकारी मारते हुए पिता से लिपट गए, मन खुशी से लबालब की खूब बुद्धू बनाया। खाना देखते ही अरुण वर्मा किलक उठे, वाह मूली के पराठे, कुरकुरे और लाल, एकदम माँ की तरह, ये तुमने अच्छा किया जो माँ से पराठे बनाना सीख लिया। अरे डोंगा तो खोलो, पालक और बैगन भी तुम्हारे परिवार का फेवरेट? हाँ पिताजी को खासकर बहुत पसंद था, हफ्ते में दो दिन बनते ही बनते थे, उस दिन भी माँ ने बैगन पालक बनाए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। और फिर जैसे मनपसंद खाने के साथ मनपसंद कहानी सी दोहरा रहे हो, मैंने तुम्हें बताई थी ना पिताजी के साथ घटी वो घटना, तब पिताजी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे शिक्षा विभाग में, एक बार गर्मियों में दौरे पर आए, डायरेक्टर के लिए बर्फ का इंतजाम नहीं हो पाया था, बस गुस्सैल अफसर बिलबिला उठा था, फौरन पिताजी की मुअत्तली का ऑर्डर लिखा और चलता बना, सारा स्टाफ सन, हर तरफ तहलका और सन्नाटा था, साथ साथ एक दो सहकर्मियों ने सुना, आकर समझाया भी, माफी मांग लीजिए शायद अफसर का दिमाग बदल जाए, नहीं तो फलां फलां के पास जाइए, हम लोग भी कोशिश करते हैं। पिताजी ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया, उल्टे उन लोगों को शांत किया और चुपचाप घर लौट आए। माफी ना मांगने का कारण भी स्पष्ट था, शहर में कहीं बर्फ नहीं थी उस दिन, और बर्फ लाने के लिए 40 मील दूर दूसरे शहर विभाग की गाड़ी भेजना पिताजी के उसूलों के खिलाफ था। ये सब किसी से कहने की जरूरत थी भी नहीं। विभाग का हर बड़ा छोटा सहयोगी और कर्मचारी ये बात जानता था, ये भी कि 18 सालों की उनकी नौकरी में कहीं लापरवाही या बेअदबी का एक छोटा सा धब्बा नहीं था। उनके उसूलों, आदर्शों और स्वाभिमान की मिसाल पेश की जाती थी। उनकी बेदाग कलम की इज्जत और शोहरत थी। किसकी? आपके पिताजी की? पापा? बच्चों की दो जोड़ी कौतिक भरी आंखें थोड़ा थोड़ा समझते हुए पूछ रही थी। हाँ हाँ, मेरे पिताजी की, और नहीं तो क्या? तुम्हारे पिताजी की? और अरुण वर्मा बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मेरे पिताजी घर आए और बिना किसी से कुछ कहे, माँ से भी नहीं, यही बैगन पालक और पराठे खाकर सो गए। लेकिन जब सुबह उठे और अखबार उठाया तो आंखों पर विश्वास ना आया। शहर के प्रमुख अखबार के पहले पृष्ठ पर पिताजी की मुअत्तली की खुले आम भर्त्सना की गई। उनकी कार्य कुशलता और निष्ठा के प्रतिदान स्वरूप मिले इस नौकरशाही कोप को शहर के सारे बुद्धिजीवियों, प्रमुख नागरिकों, सहयोगियों ने घोर अत्याचारपूर्ण और अन्याय ठहराया था। दूसरे दिन ऑफिस जाने पर पता चला कि विभाग के आधे से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे तैयार कर रखे हैं भेजने के लिए। फिर छोटी बिटिया उन्नीधी हो रही थी, लेकिन बेटे की आंखों में नींद की जगह एक चमक थी। फिर डायरेक्टर को क्षमा याचना के साथ अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। बस कहानी खत्म, अब आप जाइए, सो जाइए। अरुण वर्मा ने बेटे के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। वसुधा चुप रही थी लगातार, लेकिन बच्चे सो गए तो बिस्तर पर आकर अनायास ही पूछ बैठी, सुनो, तुम भी किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद तो नहीं कर रहे? अरे पागल हो गई हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा क्यों? इसलिए कि इतनी बार की सुनाई कहानी तुमने आज फिर दोहराई। वो तो अपनी बैंकिंग के लिए, क्योंकि ये सब मेरे बहुत छुटपन में मिली संजीवनी है ना, टॉनिक, उसूल के पक्के परिवार का 40 साल पुराना नुस्खा, डिंग डोंग डिंग डोंग। अरुण वर्मा हंसे, लेकिन फिर कबूलते हुए बोले, लेकिन सच सच कहूं तो मन तो उद्विग्न है, मेरे और बच्चों के लिए। नहीं नहीं, वो तो आज की मुक्त नारी तुम संभाल ले जाओगी। तुम लोगों की मुक्ति की इससे बड़ी सार्थकता और दूसरी हो भी क्या सकती है? सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए भी लड़ना कोई लड़ना है? अरुण ने चुहल के स्वर में कहा। ठीक, मान लिया, फिर तुम्हारी उद्विग्नता का कारण? हाँ, कारण छिपाऊंगा नहीं। तुमने महसूसा ना, इतने इतने लोग आए मुझे इतना समझाने, लेकिन इनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं कहीं ना कहीं सही हूं। मेरा मतलब किसी इंकलाब, किसी विद्रोह से नहीं है, लेकिन लोग आज सही को सही मान लेने में इतना घबराते क्यों है? यहाँ मेरे घर के अंदर एक छोटा सा सच स्वीकारने में कहीं कोई नुकसान तो नहीं था उनका? सीधी सी बात है, नजरिया उनका दूसरा है, और तुम्हें किसी की दया या सहानुभूति की जरूरत ही क्या? नहीं सुधा, अपने लिए नहीं, मैं तो खुद उनके लिए कह रहा हूं। लेकिन एक बात और भी तो है, अगर इतनी जरा सी भी परिवर्तन का बदलाव या उसकी झलक ना दिखे तब तो यही लगता है ना शायद अब जीर्णोद्धार हो ही नहीं सकता। सब कुछ भी सोचना या करना व्यर्थ है। फिर वही बदलाव या चमत्कार जैसा कुछ कर दिखाने की मंशा या महत्वाकांक्षा तुमने खुद स्वीकारा है ना कि ये तुम्हारी लत है, बस इसी तरह करते चलो। लेकिन आदमी हूं मैं भी वसुधा, किसी भी औसत कमजोर आदमी की तरह कमजोरियां मुझमें भी पनपती हैं, दुविधा मुझे भी घेरती है। बीवी बच्चों के दुखते कंधों के बूते पर किया गया ये व्रत संकल्प क्या ऐश और मुफ्तखोरी? जानती हूं किसी व्यक्ति का परिवार उस पर आश्रित हो उसकी बाध्यता सीमाएं होती हैं, एक हद से आगे जाया नहीं जा सकता। लेकिन यहां हमारे केस में तो तुम्हें स्वतंत्र कर रही हो, मेरी भी एक महत्वाकांक्षा समझ लो। टॉनिक नहीं पिया तो क्या? लेकिन बच्चे सो गए, तुम भी सो जाओ अब। लेकिन सो नहीं पाए अरुण वर्मा, सारी रात आंखें छत दीवार टटकोरती रही, एक के बाद एक सधे बंधे हाथ वापस लौट जाने का रास्ता दिखाते रहे, जैसे कह रहे हो लौटो अरुण वर्मा, ये आम रास्ता नहीं है। औसत सामान्य आदमी का इस राह से गुजरना बहुत मुश्किल है। अरुण वर्मा सोचते हैं, वो जानते तो हैं ये सब, लेकिन तब भी कहां रोक पाते हैं अपने आप को, वही लत। सुबह सुबह जब आंख खुली तो छुटपुटा सा बच्चे वसुधा सोए ही हुए थे। अब आज ऑफिस भी कहीं जाना बहुत बड़े सपाट सन्नाटे भरे मैदान के बीचों बीच जैसे अकेले खड़े हो। कुछ नहीं सूझा तो चुपचाप छोटी सी खुरपी लेकर बगीचे में आ गए। यूं ही क्यारियों के बीच अनमने से सूखी पीली पत्तियों को धीमे धीमे निकाल कर अलग करते रहे कि तभी आंखें मलता छुटका सा बेटा आकर लिपट गया। पापा, वो जो कल आप बात कर रहे थे ना अपने पापा वाली बात, आज फिर से ठीक ठीक से मुझे बताइए, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। अरुण वर्मा ने सहसा बेटे को बाहों में भरा और अपने कद की ऊंचाई भर उठा लिया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यबाला की लिखी कहानी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी निधि मिश्रा।